प्रश्न है मानव का संबंध विधान के नाते विधायक से है या विधायक के नाते विधान से है। प्रश्नकर्ता का अपना विचार क्या है, वे अगर विधायक को मानते हैं तो उनका संबंध विधायक के नाते विधान से रहेगा, लेकिन सभी का ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग इस विचार के होते हैं कि वे जगत के, समाज के, प्रकृति के विधान को मानते हैं और विधायक को नहीं मानते हैं। फिर भी जो विधान को मानता है उसके अनुसार जीवन यापन करता है उसको विधायक मिल जाता है न मानने पर भी। इसलिए प्रधानता विधायक की है और साधक कहाँ से आरंभ करेगा ये उसकी अपनी रुचि की बात है। अगर वह ईश्वर विश्वासी है तो विधायक को मान लेगा पहले और विधान उसके जीवन में आ जाएगा पीछे, और अगर वह विचारक है तो विधान को मानकर चलेगा पहले और विधायक का साक्षात्कार हो जाएगा पीछे। वर्तमान जीवन को सुंदर बना सकने की निराशा ही क्या जन्म मरण से छुटकारा पाने को सोचने का कारण नहीं है? ऐसा नहीं है। और जो लोग वर्तमान जीवन को सुंदर बना सकने की निराशा, तो सुंदर शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। जो लोग जीवन के सही मूल्यों को सामने रखकर उसको सुंदर बनाने चलते हैं उनको किसी प्रकार से निराशा नहीं होती है। प्रश्नकर्ता को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चाहते थे वो संसार में नहीं मिला, तब चलो उधर की बात सोचें, तो हारा हुआ व्यक्ति अध्यात्म जीवन में प्रवेश नहीं पाता है, विचारक प्रवेश पाता है। विचार के प्रकाश में नाशवान को नाशवान जानकर उसकी आशाओं को स्वेच्छा से छोड़ देता है, उसका प्रवेश अध्यात्म जीवन में होता है। और जो सुख की वासनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो पूर्ति के उपाय में निराशा मिली इसलिए वो अध्यात्म को सोचे, तो ऐसे हारे हुए का सौदा अध्यात्म जीवन नहीं है। प्रश्नकर्ता ने लिखा है वर्तमान जीवन को सुंदर बना सकने की निराशा। तो मानव सेवा संघ की प्रणाली में जीवन को सुंदर बनाने में निराशा किसी को होती ही नहीं है। सुंदर बनाने में निराशा नहीं हो सकती। विलास की पूर्ति में निराशा हो सकती है, कामना की पूर्ति में निराशा हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति का सुख भोगने में उसके प्रयास में निराशा हो सकती है, सुंदर बनाने में निराशा कभी होती नहीं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन सुंदर बनता है सेवा त्याग और प्रेम से, और इसमें सेवा त्याग और प्रेम में किसी प्रकार से निराशा आ नहीं सकती। इसलिए निराशा शब्द को सुंदरता के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। और जब जीवन सुंदर हो गया तो वह छूटे या न छूटे क्या अंतर पड़ता है? यहाँ भी वही गलती हो रही है प्रश्नकर्ता भाई से। सुंदर शब्द का वे गलत अर्थ ले रहे हैं। कपड़ा सुंदर, खाना सुंदर, महल सुंदर, सब प्रकार का सुख, सब प्रकार से सुविधा, इसको अगर वे सुंदर ले रहे हैं इसीलिए ये गलती हो रही है, अन्यथा ये प्रश्न नहीं बनता है, ये प्रश्न ही गलत है। स्वामी जी कहते हैं यदि हम में से बुराई निकल गई तो हमें जगत में बुराई दिखेगी नहीं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि जगत में बुराई नहीं है, परंतु हमें जगत में बुराई देखने का अधिकार नहीं है। कृपया उक्त की व्याख्या करके समझाएं। तो प्रश्नकर्ता भाई से मैं यह पूछ रही हूँ कि महाराज जी के ये वचन जो हैं वो आपको मंजूर हैं कि नहीं है? व्याख्या तो उसके बाद में कर दूंगी, लेकिन पहले आप अपना विचार बताइए कि इस विचार से आप सहमत हैं। किसका प्रश्न है भाई? अच्छा, तो आप इससे सहमत हैं? मैं व्याख्या करूंगी, बहुत बढ़िया, लेकिन आपका विचार जानना चाहती हूँ। लिखा है, यदि हम में से बुराई निकल गई तो हमें जगत में बुराई दिखेगी नहीं। सहमत नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि अपने में बुराई न होने पर भी जगत की बुराई दिखती है, ठीक है। अब इसी ढंग से सोचेंगे हम लोग। बात ऐसी है कि एक परसेप्चुअल फील्ड होता है, परसेप्चीकरण का एक क्षेत्र होता है, मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो काम करता है, और अनेक अवसरों पर, कम से कम अपने साथ जो कुछ हुआ है वो तो मैं पक्की तौर से जानती हूँ, और साइकोलॉजी में जो पढ़ा है उसका उससे समर्थन भी है कि सचमुच जिस बात की संभावना मेरे भीतर नहीं है, किसी भी व्यक्ति के संबंध में मेरी जो धारणा है कि ये विद्यार्थी हैं, कि ये साधक हैं, कि ये सज्जन हैं, तो वे इस प्रकार की गलती कर सकते हैं, ऐसी संभावना मेरे मस्तिष्क में नहीं रहती है, तो उस प्रकार की गलतियों को अनेक बार अपने साथ होने पर भी कभी ख्याल में ही नहीं आता है कि ये भला आदमी ऐसा कर सकता है, तो दिखता ही नहीं है। अनेक बार ऐसा पाया है मैंने, वर्षों तक धोखे खाते 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 बड़ी कठिनाई से, बड़े दुख के साथ, जब एकदम आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है तब बड़े दुख के साथ मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि अच्छा ऐसा आदमी भी ऐसा कर सकता है। तो चोट खाते जा रहे हैं, घाटा लगता जा रहा है, आघात पड़ता जा रहा है, और प्रेम पूर्वक उसके साथ मैं रहती जा रही हूँ, और कभी सोचने में ही नहीं आता है कि ऐसा आदमी ऐसा कर सकता है, तो ध्यान में नहीं आता, दिखती ही नहीं बुराई। एक तो ये बात हो गई। साइकोलॉजी वालों ने ये कहा कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। सचमुच जगत कैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं, कैसा देखते हैं कि जैसे हम हैं। तो अपना जो परसेप्चुअल अपरेटस है उसमें जो दोष है तो वही दोष जगत में दिखाई देता है, वो जैसा है वैसा ही जगत दिखाई देता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी हो गया। तीसरी बात जो आपने कही वो भी बहुत हद तक व्यवहारिक जगत में देखने में आती है कि सचमुच कोई खास दोष जो अपने में नहीं है तो भी दूसरों में हम लोगों को दिखता है। ऐसा अगर नहीं होता तो समाज के बड़े बड़े सुधारक जो स्वयं शुद्ध जीवन को लेकर, सर्वहितकारी भाव को लेकर दुनिया में आए और दुष्ट प्रकृति के लोगों की दुष्टता के विपरीत उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और बृहद समाज के साथ होने वाली बुराई को रोका, ऐसा भी हुआ, तो वो दोष उनमें अपने में नहीं था, फिर भी उनको दिख रहा था कि इस एक विकार युक्त व्यक्ति के कारण से अनेकों को कष्ट हो रहा है। तो जब उन्होंने उसको परसीव किया कि ये दुष्टता कर रहा है तब तो उनको ऐसा मालूम हुआ। इस तरह से आपका कहना भी एक अंश में सही है और इसी अंश में सही है, उसको सर्वांश में नहीं लेना चाहिए। और आखिरी बात क्या है कि सचमुच अगर सीमित अहम भाव और ये मैं हूँ और ये जगत है, ये दार्शनिक सिद्धांत है ना, तो मैं हूँ और जगत है, तो अपने से भिन्न एक जगत दिखाई देता है, एक है मूल सत्ता और एक में ये द्वैत का भास हो रहा है, एक मैं हूँ एक जगत है, तो दोषों का दर्शन अगर होता है तो इस द्वैत के कारण ही होता है। तो ये बात ठीक तरह से हम लोगों को कब मालूम होगी, जबकि द्वैत का नाश हो जाए, तो वहाँ पहुँच करके ये सिद्धांत बिल्कुल 100% पक्का उतरेगा, क्योंकि अपने से भिन्न किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो दोष दिखेगा ही नहीं। दोष जहाँ से दिखता है वो जड़ कट जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने हमेशा आखिरी बात को लेकर के सूत्रों का गठन किया है। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम में से बुराई निकल गई तो हमें जगत में बुराई दिखेगी नहीं। और दूसरी बात अब कह रहे हैं, जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि भाई हमारे में बुराई न होने पर भी वो बुराई जगत में दिखती है, तो उसके लिए उन्होंने कल्याणकारी उपाय बताया कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि जगत में बुराई नहीं है, परंतु हमें जगत में बुराई देखने का अधिकार नहीं है। अब इसका अर्थ उन्होंने साधक की दृष्टि से बताया और ये बताया कि जगत में बुराई है कि नहीं है इसको तो कोई वितराग पुरुष ही देख सकेगा, जान सकेगा, कर सकेगा। और हम लोग जब तक बिल्कुल वितराग नहीं हो गए हैं तो आंखों में दूसरों का दोष दिखता तो है, लेकिन अगर दूसरों को हम दोषी मानते रहेंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा। इसलिए मना किया कि दूसरों की दूसरों में बुराई देखने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, इसमें भी एक बड़ा रहस्य है। वो रहस्य ये है कि जिसमें मुझको दोष दिख रहा है वो सचमुच उसमें दोष है कि नहीं है, इसमें तो संदेह है। और मैं अगर मान लूँ तो मानने से दोनों तरह का अपराध बनेगा, अपना चित्त भी अशुद्ध होगा और उसके प्रति भी द्वेष भाव बढ़ेगा। तो साधक को अपना कल्याण अभीष्ट है। और ये सच्ची बात है कि अपना कल्याण जिसको अभीष्ट नहीं है उसके द्वारा दूसरे का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए भी स्वामी जी ने मना किया कि दूसरों में दोष देखो मत। अधिकता तो है ही है हम लोगों को। और इसके लिए उन्होंने बताया कि अगर कोई आदमी तुमको बुराई करता हुआ दिखता है तो ये कैसे हो सकता है कि तुम देखते रहो और वो बुराई करके पार कर जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध बोध माता जी इस आश्रम में पहली अधिष्ठात्री वही हैं, उन्हीं के कारण आश्रम बना। तो उनसे एक बार बातचीत हो रही थी, कोई ऐसा प्रसंग आया होगा, कुछ घटना घटित हुई होगी, तो स्वामी जी बार बार कहें कि माता जी ये आदमी ऐसा काम करके चला गया, तुम जिंदा कैसे रही? इसका अर्थ क्या है कि गलत करने वाला बलवान भी हो और मेरी हानि भी हो सकती हो, प्राण हानि भी हो सकती हो, जान भी जा सकती हो, तब भी अगर लगता है कि ये बुराई है तो आंखों से देखते हुए उसको होने नहीं देना चाहिए। ये बात महाराज कह रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये स्पष्ट है ना कि बुराई जगत में दिखती है। तो दो बातें हो गई, एक तो ये हो गई कि बुराई अगर देखो तो प्यार से, दुलार से, फटकार से, मित्रता से, जैसे भी हो उस व्यक्ति का हित दृष्टि में रख करके उस बुराई को रोकने की चेष्टा करो। लेकिन बुराई करने वाले को बुरा समझना दिल में, बुराई को रोकने में कुछ सक्रिय भाग न लेना और उस पर पूरा विचार न करना और थोड़ी सी बात से किसी में बुराई का ख्याल बना लेना और उसको दिल में बसाए रखना, ये अपना सर्वनाश है। ये बात इसलिए उन्होंने सलाह दी कि भाई एक तो दूसरे में जो बुराई दिख रही है वो कितने अंश में सही है अपने को पता नहीं है, है लेकिन क्या जाने थोड़े को मैंने ज्यादा समझ लिया है कि ज्यादा को थोड़ा समझ लिया। ऐसा भी होता है, आदमी कभी कभी बड़ा भयानक होता है और अपने को पता ही नहीं चलता। थोड़ी बहुत मामूली गलती उसकी जान करके हम लोग उसकी तरफ से उपेक्षा कर लेते हैं, कहते हैं छोड़ दो, जाने दो, लेकिन बड़ा भयंकर परिणाम निकलता है। तो कभी बुराई बहुत बड़ी होती है और हमको छोटी लगती है, और कभी बुराई बहुत छोटी होती है और अपने को बहुत बड़ी लगती है। तो संदेहात्मक बात ये है, पक्की बात नहीं है। और दिखाई दे तो उसको रोकना हम सभी का धर्म है, और बुरे को बुरा समझते रहना अपने लिए घातक है, अपना बड़ा भारी नुकसान होता है, इसलिए मना किया। और एक बात और महाराज जी ने बताई, संत समागम में कहीं पर लिखी हुई बात है ये कि भाई देखो, समाज में कहीं पर बुराई सिखाने का स्कूल खुला हुआ तुमने नहीं देखा होगा, किसी स्कूल किसी संस्था के ऊपर साइन बोर्ड नहीं देखा होगा कि यहाँ पर हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती है, कि यहाँ पर चोरी करना सिखाया जाता है, कि यहाँ पर धोखा देना सिखाया जाता है, ऐसा तुमने नहीं देखा होगा। तो बुराई की टीचिंग नहीं होती है, पढ़ाई नहीं जाती है बुराई, फिर भी बुराई समाज में फैलती है, तो इसका कारण क्या है? तो इस पर उन्होंने प्रकाश डाला और ये कहा कि किसी को बुरा जान करके और उसके सुधार के लिए तुरंत ही उसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए कर डालो, जोर डाल करके रोकना हो जोर डाल के रोक दो, प्यार करने से समझा सको प्यार करके समझा दो, कुछ ले दे करके वो मान जाए तो ऐसे कर दो, ईश्वर से प्रार्थना करके उसको सुरबुद्धि जग जाए तो ऐसे कर दो, तो वस्तु का घाटा लग जाए और आदमी बुराई करना छोड़ दे, समझ में आ जाए उसके, तो प्यार से समझे तो प्यार से समझा दो, डांट से समझे तो डांट से समझा दो, सहायता करने से काम बने तो सहायता करके उसको बचा दो, तो जैसे भी हो तुरंत उसके साथ वैसे करना चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी बुराई को दिमाग में रखना नहीं चाहिए। और ये बड़ी गलत बात है कि हम बुरा समझते रहें और करें कुछ नहीं, तो उसमें एक सूक्ष्म हानि ये होती है कि मेरे भीतर जो दूसरों के प्रति बुरे भाव बनते रहते हैं, विचार बनते रहते हैं, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, तो बुरे विचारों की उत्पत्ति जो मेरे मस्तिष्क में होती है वो दूसरे मस्तिष्क के भी सुप्त बुरे विचारों को जगाती रहती है, तो इस तरह से बुराई फैलती है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि देखो, अगर बिना स्कूल खोले और बिना ट्रेनिंग दिए समाज में बुराई फैल सकती है, तो बिना स्कूल खोले बिना ट्रेनिंग दिए सद्विचारों का प्रभाव भी हो सकता है, तो सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको सदबुद्धि मिले, सब अच्छे रहें, तो किसी भी व्यक्ति को निकटवर्ती जन समुदाय में से कोई है, चाहे दूरवर्ती है चाहे कैसा भी है, अगर कोई उसकी त्रुटि कमी दिखाई देती है और भीतर में ये भाव जगता है कि ये भगवान ये आदमी अच्छा हो जाता तो ठीक था, तो इससे आपका भी चित्त शुद्ध होगा और आपकी सद्भावना से उसमें भी सद्भाव जगेगा, तो ये बताते हैं।
एक बात और है, मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि ये काम खराब है, इसको नहीं करना चाहिए, तो ये कायरता होगी कि हम उससे न कहें, उससे ईश्वर से प्रार्थना करके छोड़ दें?
दोनों ही बातें होनी चाहिए,
ईश्वर से प्रार्थना भी करें,
प्रार्थना भी करनी चाहिए
और कहने की हिम्मत भी रखनी
चाहिए, कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए और उसके बदले में अपने पर जो हानि आवे
उसको
कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? भाई साहब, स्वामी जी महाराज ने जो उसमें बात बताई है वो बड़े रहस्य की है कि बुराई करने वाला भी तुमको अपना मालूम हो ना, तब तुम सब कर सकते हो और सब सफलता मिल सकती है। गैरियत का और द्वेष का भाव जब रहता है भीतर तो कहने में डर भी लगता है और उससे जो हानि होती है उसको सहने को आदमी तैयार भी नहीं रहता है, ये दुष्टों की दुष्टता में कौन फंसे ऐसा, और जो बुराई कर रहा है वो भी मेरा अपना है, तो हम कैसे देख सकेंगे कि वो गलती करके अपने को गड्ढे में डालेगा, देखा ही नहीं जाएगा।
ये तो ठीक है, अपनी तरफ से कह लेकिन
वो नहीं मानेगा, वो कहेगा मानेगा,
वो नहीं मानेगा,
उसको तो आप टोकने जाइएगा तो 10 ऊपरी बात बना करके आपकी बात को गलत करने के लिए वो जो चाहे उसको करेगा, होता है एक गलती किसी की बताओ तो उसके समान वो 5 गलती आपकी बताएगी, तो सुनेगा ही नहीं कि आपने उसको क्या कहा, तो ये सब तो उसकी प्रतिक्रिया तो देखना ही नहीं है।
उसको देखना नहीं ना, अपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए,
इतनी हिम्मत होनी चाहिए
तभी कर,
और भीतर में इतना प्यार होना चाहिए कि उसकी रुखाई से अपने जीवन में निरस्ता ना आवे, ये भी तो हो जाता है ना। और दूरी दूरी होने लगती है। हम लोग मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पढ़ा करते थे, पढ़ाया करते थे फिजिकल नियरनेस एंड साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। शरीर से एक परिवार में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना जरूरी है, ये तो फिजिकल नियरनेस हो गया। शरीर से नजदीक नजदीक रहते हुए भी बड़ा जबरदस्त साइकोलॉजिकल डिस्टेंस होता है, और वो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस जो है मनोवैज्ञानिक दूरी, मन से एक दूसरे से दूर हो गए तो वो व्यक्ति के जो घर का वातावरण है, समूह का चाहे आश्रम का, बहुत नीरस हो जाता है।
वही
हिम्मत भी होनी चाहिए और दिल में प्यार भी होना चाहिए। स्वामी जी महाराज की बातें क्यों नहीं बुरी लगती थी, और जो लोग बुरा मान गए वे लिंक में से छूट ही गए, जो लोग बुरा मान गए वो छूट ही गए, पछता रहे हैं कि बड़ी भूल हो गई मुझसे। और जिन लोगों ने बुरा नहीं माना, बुरा लगने पर भी सोचा कि भाई ये तो हमारे ही चिंतक हैं, हमारे प्यारे हैं, जरूर मेरी भलाई के लिए ऐसा करते होंगे, तो खूब कस के स्वामी जी महाराज ने डांटा फटकारा, लेकिन उसके भीतर कितना प्यार है अबार। तो जिन लोगों ने इसको जाना उनको बुरा नहीं लगा, और स्वामी जी महाराज को बिल्कुल ही डर नहीं लगता था, कोई भला मानेगा कोई बुरा मानेगा, और बिगड़ते तो कह भी देते, अरे बुरा मानेगा तो दो रोटी और खा लेना, मैं तुमको गैर मानता हूँ क्या, तू मेरा पराया है क्या, खूब डांटते अच्छी तरह से हिला डुला देते, और फिर उसके बाद वही प्यार है। तो ऐसा वही कर सकता है जिसको कि बुराई करने वाला भी गैर ना लगे। हाँ, बड़ी भारी बात है, वो अपना लगेगा तो अपने से रहा ही नहीं जाएगा उसका सुधार किए बिना। बहुत जोरदार बात है। तो प्यार का होना और अपनेपन का होना, एक हृदय का सरस होना, और बुराई करने वाले की बुराई के प्रति भी अपने में उदारता रखना, ये सब ऐसी अच्छी बातें हैं कि ध्यान लगाने में, भजन कराने में, भगवत भक्त होने में, सब में मददगार होती है। और हृदय में अभिमान रखो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और जो दूसरे लोग हमारे साथ हैं ये बड़े नादान हैं, बड़े अजानकार हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा समझ करके अपने गुणों के अभिमान पर उनके संग अड़ जाओ तो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस तो होगा ही, और एक सामूहिक जीवन का मजा तो फीका हो ही जाएगा, अपने भीतर भी नीरसता भर जाती है जो कि साधना के लिए बहुत हानिकारक है। तो साधु संत महात्मा जो होते हैं, करुणावान संत पुरुषों के जीवन को देखा होगा आपने, जितना भी देखने को मिला सुनने को मिला सब में आपने देखा होगा कि भूल करने वाले के प्रति भी उनके भीतर बड़ी प्रियता होती है, बहुत प्यार करते हैं, और उनके प्यार का ही जादू होता है जो कि भूल करने वाले को सुधारता है। नहीं तो समझ बूझ क्या बुराई करने वालों की कम होती है। क्रिमिनल साइकोलॉजी हम लोग पढ़ा करते थे तो उसमें ये आता था कि क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ऊंचा होता है, एवरेज से ज्यादा। स्वराज्य होने के बाद शिक्षण संस्थाओं में एक प्रोग्राम बनाया गया कि प्रोफेसर लोग जाएंगे और जेल में जेल के कैदियों को पढ़ाएंगे। तो हमारे उन दिनों में मैं पढ़ती थी तो हमारे आचार्य लोग जब जेल में से पढ़ा करके आते थे तो बातचीत करते थे तो कहते थे कि जेल के कैदियों से बात करो और यहाँ आकर क्लास में बात करो, दोनों में बड़ा फर्क मालूम होता है। वे तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि मुंह से एक बात निकले नहीं और झट पकड़ लेते हैं, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ऊंचा होता है। तो उनकी समझ बूझ कम थोड़े है कि आपका समझाना बुझाना वो मानेंगे, आप एक ढंग से समझाएंगे तो वो 10 बात आपको समझा देंगे, तो उससे काम नहीं बनता है। लेकिन हृदय में अपनापन, ये बुराई करने वाला भी मेरा ही है, चाहे जगत के नाते मेरा है, चाहे आत्मा के नाते मेरा है, चाहे प्रभु के नाते मेरा है, ये मेरा ही है, ये अपनेपन का भाव जो है वो व्यक्ति की वाणी में शक्ति देता है, जादू देता है, स्पर्श में वो अनुभव देता है कि जिससे बुराई करने वाले का दिल बदल जाता है। और इसके अलावा ये बात भी है कि हम सब लोग सर्वज्ञ हैं नहीं, और सब प्रकार के सब विकार नाश हो गए ऐसा भी नहीं, तो जहाँ कहीं अपनी गलती मालूम हो तो अपनी को भी स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा हाँ मैंने ऐसा समझा था, ये ठीक नहीं है, अच्छी बात गई बात खत्म, अपना भी मानना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम की सहज विवेचना सहज शब्द से उनको बहुत हंसी आती है। सहज विवेचना क्या होगी भाई? स्वामी जी महाराज ने एक बार एक घटना सुनाई थी। ये कहा था कि गंगा जी के तट पर बहुत से साधु संत लोग ऊंचे ऊंचे दर्जे का सत्संग कर रहे थे, बहुत देहातीत जीवन की चर्चा चल रही थी। तो स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज भी थे उस समय, ऐसा मेरा ख्याल है, उन्हीं के लिए कहा था कि और किसी महात्मा के लिए। तो कहने लगे कि बहुत बढ़िया से ऊंची ऊंची बातों की चर्चा होती रही होती रही, तो वो महात्मा दूर बैठे थे सुन रहे थे। जब उनकी जब चर्चा करने वालों की चर्चा खत्म हो गई तो वो महात्मा कहने लगे कि गंगा के तट पर असत के संग में सत की चर्चा, गंगा के तट पर असत के संग में सत की चर्चा, देहधारी हो करके देहातीत जीवन की बात करना। तो ऐसे ही मुझे ये लग रहा है कि एक ओर तो आप सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं सहज विवेचना। तो सत्य से दूर रहकर, शिव से दूर रहकर, सुंदर से दूर रहकर सहज विवेचना कैसे हो पाएगी भाई? कठिन भी विवेचना बन जाए तो समझो कि बन गई। और अब चर्चा ले लीजिए, और चर्चा ये है कि मनुष्य को स्वभाव से ही सत्यम शिवम सुंदरम आकर्षक लगता है, पसंद आता है। सत्य में नित्यता है, सातत्य है, कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं पर कुछ टूटने का प्रश्न नहीं है। और शिवम में कल्याण है सब प्रकार से, और सुंदरम में आकर्षण है। तो सबसे अधिक सुंदर, परम सुंदर, अनंत सौंदर्यवान कौन है जो कीड़े मकोड़े को, प्राणी मात्र को, वनस्पति को, चर अचर को, सबको अपनी मधुरता से, अपनी सुंदरता से अपनी ओर आकर्षित करके रखता है? तो ऐसा जो एक तत्व है जो कि इस भौतिक जगत में प्रकट नहीं है, अपने रूप में प्रकट नहीं है, जगत के रूप में तो प्रकट है ही, तो वहाँ वो दिखाई नहीं देता। यहाँ जो आज सुंदर लग रहा है कल असुंदर बन जाता है, आज जो बहुत ही आकर्षक लग रहा है कुछ ही देर में विकर्षक हो जाता है, अभी जो सत्य लग रहा है थोड़ी देर में मिथ्या प्रमाणित हो जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमारे भीतर सत्यम शिवम सुंदरम की मांग को भर सके, वही जगत में कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर अब सोचे मनुष्य कि है भी नहीं और अपने को चाहिए भी, ऐसा कैसे हो? तो मैं मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता मानती हूँ कि मरणशील शरीर को लेकर के, और वो पुस्तकों में से पढ़ता है, वाणी से विवेचन करता है, श्रवण से सुनता है, क्या क्या पढ़ता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है, तो मरणशील शरीर को लेकर के अविनाशी जीवन के बारे में बातें करता रहता है, सोचता रहता है, विचारता रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि जिस समय हम लोग नाशवान शरीरों के साथ संबंध जोड़ के बैठे हैं, उसी समय हमारे ही अहम में अविनाशी तत्व भी विद्यमान है, और चूंकि मैंने नाशवान से संबंध जोड़ा, इसके कारण से भीतर में सीमा आ गई, पराधीनता आ गई, नीरसता आ गई, तो उसको सहन नहीं कर सकते। तो जो वर्तमान दशा है वो अच्छी लगती नहीं है, सहन होती नहीं है, और जो जीवन है वो प्राप्त जैसा लगता नहीं है, तो उसकी ओर आकर्षित हो करके सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में चर्चा चलती रहती है। अब करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि जो बाहरी संबंध हैं हमारे, आँखों को लेकर दृश्य जगत से, कान को लेकर ध्वनि जगत से, जीभ को लेकर स्वाद जगत से, इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियां हैं अपने पास, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भौतिक तत्वों का जो संपर्क अपना बनता है, उसके संपर्क बनने के परिणाम को अच्छी तरह से देखना चाहिए। इसी के लिए व्यक्तिगत सत्संग की बात मानव सेवा संघ में बड़े जोर से बताई गई। अकेले अकेले बैठे रहो और देखते रहो, सोचते रहो, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ। तो जिस समय आपको पता चलेगा कि सचमुच यहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे भीतर की मांग को पूरी कर सके, तो फिर बाहर का मूल्य घट जाएगा। छोड़ करके भाग जाएंगे तो बात नहीं है, कि आंख बंद करके दृश्य जगत से अपने को हटा लेंगे तो बात नहीं है। महाराज जी कहते कि अरे भगवान ने आंखें दी हैं, भले आदमी खोल करके देख दुनिया को, रूठ के बैठता काहे को है संसार से, आंख बंद करके गुफा में घुस के बनाने वाले ने बनाया है तो देख, लेकिन आंखें खोल कर देख, विवेक के प्रकाश में देख, जीवन के अनुभव को सामने रख कर देखो। तो बंद करने की बात नहीं है, कि आंखों को फोड़ देने की बात नहीं है, कि भाग जाने की बात नहीं है, बात केवल इतनी है कि विवेक के प्रकाश में इनके परिणामों को देख करके अगर इनका मूल्य जीवन में से निकल गया तो सचमुच सत्यम क्या है वो अपने आप भीतर से प्रकाशित हो जाएगा। और उसी तरह से जो सत्य है वह शिव भी है, जो सत्य है वह सुंदर भी है, वो एक ही की तीनों विभूतियां हैं, एक ही अनंत तत्व है, एक ही अनंत जीवन है। उसको सत्य कहेंगे तो वो शिव भी है, सुंदर भी है। उसको शिव कहेंगे तो वो सत्य भी है, वो सुंदर भी है। उसको सुंदर कहेंगे तो वो सत्य भी है और शिव भी है। तो एक ही अनंत तत्व की विभूतियां ये हैं, और उसी तत्व के आधार पर हम लोगों का व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। इसलिए जब तक हम उससे विमुख हैं तब तक उसकी आवश्यकता मालूम होती है, और विमुखता मिट जाती है तो उससे अभिन्नता हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा त्याग क्या है? जीवन का सबसे बड़ा त्याग ये है कि अपने को त्याग का भास न हो कि मैंने त्याग किया। अब जहां से आवे, जब तक किसी को मालूम होता है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना कर दिया, तब तक उसको त्याग का बंधन बना रहेगा, अहम का पोषण होता रहेगा। और सबसे बड़ा त्याग है कि त्याग का भास त्याग दिया जाए, उसको पता ही नहीं चले कि मैंने इतना त्याग किया। यदि दुख सहने की सामर्थ्य आ गई है परम पिता की सहज कृपा मानकर, किंतु आए हुए सुख से तिलांजलि लेने की सामर्थ्य नहीं है, इससे आगे का साधन क्या है? आहा, ये तो बहुत ही सहज है। यदि दुख सहने की सामर्थ्य आ गई तो मानव सेवा संघ ने सहने की सामर्थ्य, सहने का परामर्श नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुम दुख के भोगी मत बनो, दुख के उपयोगी बनो। तो सहन करने की सामर्थ्य तो सच पूछिए तो परमात्मा सभी प्राणियों को देते हैं। दुख के आने से पहले दुख से जितना घबराता है आदमी, आ जाने के बाद उतना नहीं घबराता है। और जिस क्षण में नया नया दुख आ गया उस समय आदमी जितना अधीर रहता है कुछ दिनों के बाद उतना अधीर नहीं रहता। दुखी लोगों को संभालते हुए महाराज जी ने कितनी बार कहा कि देखो भाई, जहाँ से दुख आता है उसको सहने की शक्ति भी वहीं से आती है। तो सहने का परामर्श यहाँ नहीं दिया गया है, परम पिता की सहज कृपा मानकर उसको तो हर्ष पूर्वक उसका स्वागत करने का परामर्श दिया गया कि अगर किसी प्रकार की प्रतिकूलता आ गई तो प्रभु की कृपा मानो, उनके मंगल में विधान का काम मानो, तो हर्ष पूर्वक उसका स्वागत करो। आओ भाई, आओ, देखो, बैठो, बताओ मुझे क्या कहने आए हो, क्या सिखाने आए हो, कौन सा त्याग कराने आए हो कि दुख हरी हरी से मिलाने आए हो। तो ये सहना नहीं हुआ, ये हर्ष पूर्वक उसका स्वागत करना हुआ। और जिसको दुख का हर्ष पूर्वक स्वागत करने आ गया उसमें सुख की वासना रहेगी नहीं, तिलांजलि देने की ताकत खोजनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से ही बात पूरी हो जाएगी। जरा भी उसमें लालच शेष नहीं रहेगा। ये बात, ये दोनों तरह की बातें इकट्ठे क्यों मन में उठती हैं, अब मेरी समझ में आती है। पहले तो मैं उलझ जाती थी, स्वामी जी महाराज मुझको बताते रहते थे कि देखो भाई, बात ऐसी नहीं है, उलझो मत। तो पहले तो लगता था कि ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें एक साथ हो गई, परस्पर विरोधी, लेकिन ये परस्पर विरोधी नहीं है। अभी तक मैंने दुख का हर्ष पूर्वक स्वागत नहीं किया, इसलिए सुख की दासता मिटी नहीं। तो लगता है कि दुख को तो सहेंगे भाई, लेकिन सुख कैसे छोड़ेंगे। दूर से अभी आप कल्पना कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, परंतु अगर दुख का स्वागत करने आ जाएगा, उसमें प्रभु की कृपा का दर्शन होने लग जाएगा, तो सुख का कोई मूल्य आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। फिर भी अब आप ही के स्टेज पर उतर के, आप ही के स्तर से मैं बात करूं, तो मैं ये कहूंगी कि अगर सुख आवे और आपके भीतर उसके प्रति कुछ आकर्षण मालूम हो तो सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं तो दोनों तरह की प्रार्थना करती हूँ, प्रतिकूलता आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, डरती रहती हूँ तो घबरा करके कभी कभी कहती हूँ कि हे महाराज, मैं बहुत दुर्बल हूँ, आप तो जानते हैं, उतना ही दीजिएगा जितने में मैं संतुलन बनाए रखूँ, उससे ज्यादा मत ले आना, अभी ठहर जाओ, उतनी ताकत नहीं है मुझ में, हम तो संभलेगा नहीं, ऐसे भी करती हूँ। और अगर अनुकूलता भी आती है तो उसमें भी याद करती रहती हूँ, महाराज अच्छा तो लग रहा है, आपने बड़ी कृपा की, ये मेरा राग रहा होगा मिटाने के लिए आपने ऐसा किया, लेकिन महाराज और ज्यादा नहीं, संभाल के रखिएगा मुझको, हम संभाल नहीं सकेंगे, कहीं कहीं उसमें भूल न जाऊं। तो ये भी एक तरीका है, अगर डर लग रहा है प्रश्नकर्ता भाई को कि क्या करेंगे, आए हुए सुख को तिलांजलि देने की सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य खले नहीं है, लेकिन आप उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं कि आए हुए सुख को पहन न ले, ओढ़ न ले, खा पी न ले, खुराक न बना ले, तो आप सजग रहिए, जैसे जैसे अनुकूलता सामने आवे समर्थ प्रभु को पुकारते रहिए तो बच जाइएगा। ये दोनों ही बातें होती हैं, सुख, और मैं तो समझती हूँ कि दुख का आना साधक के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना सुख का आना। दुख हमेशा सजग बनाता है, दुख हारी हरि की याद दिलाता है, अहम को गला देता है, जिस सुख सुविधा के आधार पर हम अपने को दूसरों से सुपीरियर मान रहे थे, अपने को बहुत भाग्यशील मान रहे थे, जिस सुख सुविधा में आने वाली कठिनाइयों को हम भूले हुए थे, तो वो सुख सुविधा जब चली गई, तकलीफ आ गई, तो दोनों ही तरह की बातें होती हैं। अभिमान के घट जाने से चित्त शुद्ध और शांत होता है, और दुख हारी हरि के याद आने से दुख सदा के लिए मिट जाता है। तो मैं तो समझती हूँ कि साधक की साधना में और उसके आंतरिक जीवन की प्रगति में दुख का आना उतना खतरनाक नहीं है जितना सुख का आना। इसलिए साधकों को तो आए हुए सुख के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्न जितने आए थे, जो कुछ सूझा तो मैंने निवेदन कर दिया। अब और किसी बात की व्याख्या सुननी हो तो बताइए। बिना आधार के शांत हो जाए और प्राण बिना निरोध के सम हो जाए, ये उसी के क्रम में है। होता है ऐसा, बिना निरोध के प्राण सम होता है। जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं योगी जन, उस दिन चर्चा हो रही थी कि प्राण शक्ति का मन की शक्ति से बड़ा घना संबंध है। जैसे सांस चलती रहती है ना, सांस की गति के साथ साथ मन भी गतिशील रहता है, और मन की गति अगर धीमी हो जाए तो आप देखेंगे सांस की गति भी धीमी हो जाती है। अगर कोई समस्या आपके सामने आ गई और गहन चिंतन में आप लग गए गंभीर, तो सांस भी धीरे धीरे चलने लगती है। इतना तो अनुभव होगा ही। तो मन की गति और सांस की गति, दोनों की गति में बड़ा घना संबंध है। इसलिए योग के अभ्यास में मन की गति को शांत करने के लिए प्राणों पर नियंत्रण का एक बड़ा भारी अभ्यास चलता है, वो पद्धति है। क्या पद्धति है वो? कि सांस अगर भीतर गई तो भीतर भी उसके ठहरने का एक स्थान है, तो भीतर ले जा करके उसको ठहराओ। बाहर निकलने से पहले वहां अंदर जा करके कुछ देर रुके, और बाहर निकलने के बाद भी उसके लय होने का महाप्राण का क्षेत्र है। भीतर भी है बाहर भी है, तो सांस जब निकलती है तो बाहर जा करके भी वो प्राण वायु जो है वो महाप्राण वायु में कुछ देर विराम ले। तो प्राकृतिक बात भी है, जिस सोर्स में से ये प्राण वायु मिली हम लोगों को, उसमें जा करके अगर थोड़ी थोड़ी देर टिकती रहेगी तो उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी, सबल होती रहेगी। तो इसीलिए इस प्रकार का एक अभ्यास चलता है कि अंदर जाए तो अंदर में कुंभक करो और बाहर जाए तो बाहर में कुंभक करो। कुंभक का मतलब ये है कि वहां जा करके कुछ देर ठहर जाए। तो प्राणों का निरोध कहलाता है ये, उसकी गतिशीलता को जगह जगह पर जा करके रोकना, भीतर जाए तो भीतर भी और बाहर आवे तो बाहर भी, ये रोकने का अभ्यास जो चलता है ये प्राणों का निरोध कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, सांस की गति प्राण शक्ति है, सांस की गति के साथ उसका संबंध है। पर्यायवाची है, सांस की गति मन की गति उसका संबंध है। तो ये निरोध का एक अभ्यास चलता है कि इस प्रकार से उनको रोका जाए, और ज्यादा देर तक इन दोनों को एक जगह पर एक साथ रोक लिया जाए तो जो गतिशीलता के रुकने से बहुत प्रकार की भौतिक शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा तो बहुत छोटे छोटे अभ्यासी लोग भी जान लेते हैं, दूसरों के मन में क्या हो रहा है सो जान लिया, उधर क्या हो रहा है सो पता चल गया, बहुत प्रकार के चमत्कार सब आता है। तो ये चला अभ्यास के बल पर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे जैसे उन्होंने कहा कि दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाए, चित्त बिना आधार के शांत हो जाए, वैसे ही उन्होंने कहा कि प्राण बिना निरोध के सम हो जाए। तो ये किसका होता है और कब होता है? तो उसमें अकिंचन अचाह अप्रयत्न समर्पण।
इस महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाई,
संत वाणी में हमने जीवन का सत्य सुना और उस सत्य के अनुसरण की विधि को भी सुना। कितनी सरल बात है और उसका संबंध सबसे ऊंचे जीवन से है, इस पर महाराज जी ने हमारा ध्यान दिलाया। धर्मात्मा होना हम सभी भाई बहनों के लिए संभव है, अनिवार्य है, दोनों ही बातें हैं, अनिवार्य भी है और संभव भी है। धर्मात्मा होने का व्रत क्या बताया कि सबके प्रति स्नेह और सद्भाव और सहयोग, जो सभी के लिए हृदय में सद्भाव रखता है, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, कोई दुखी न रहे, किसी का कल्याण न हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो, तो इस प्रकार की सद्भावना जिसके जीवन में रहती है वो सबके प्रति सहयोग देने को भी तैयार रहता है। तो हृदय में सद्भावना हो और व्यवहार में सबके लिए सहयोग हो, बिल्कुल व्यवहारिक स्तर की बात मालूम होती है। ऐसा लगता है कि भाई समूह वालों के लिए ये एक व्यवहार का तरीका है, लेकिन इसका बड़ा गहरा संबंध है आध्यात्मिक जीवन से। अनुभव करने पर ही इसका पता लग सकता है कि जो लोग जगत के नाते, आत्मा के नाते, परमात्मा के नाते, किसी भी नाते से सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखने लग जाते हैं, उनके में बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। कौन सी शक्ति? कि वे स्वयं अपने लिए संसार की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो हम सभी लोग सोच सकते हैं कि सबके प्रति सद्भाव रखो और सहयोग देने की मनोवृत्ति रखो तो इससे सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा। ये परिणाम तो सबको साफ दिखाई देता है कि जितने भी हम सब लोग मानव हैं और समझ बूझ रखते हैं, सचेत हैं, सुंदर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके लिए महाराज जी ने एक मंत्र बताया कि सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखो। और सचमुच अगर किसी भी मनुष्य के भीतर दूसरों के प्रति दुर्भावना और नुकसान पहुंचाने की बात न रहे तो समाज में से बुराई का अंत हो जाए, खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि बुरे संकल्प पहले हमारे भीतर उपजते हैं, तब वे बाहर में जाकर के कहीं पर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मनुष्य अपने धर्म से पहले च्युत हो जाता है, तब समाज में दुख का सृजन होता है। एक दिन एक बीमार की बात मुझको बता रहे थे लोग, तो कह रहे थे कि 30 इंजेक्शन उसको लगे, किसी के बारे में कह रहे थे, और 29 इंजेक्शन लग गए थे, तब तक रोगी की हालत बिल्कुल ठीक थी, टेटनस था कि क्या था ऐसा कुछ था, और 30वां लगा तो उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि रोगी वहीं खत्म हो गया। तो एक ही बैच में से एक ही बार का मंगाया हुआ, एक ही डिब्बे में इतने इंजेक्शन रखे थे और नर्स निकाल निकाल करके इंजेक्शन लगाती जा रही थी और ऐसा हो गया। तो उसमें अब हम लोग उस दवाई का क्या दोष दें? मैंने सोचा तो मुझे लगा कि अगर मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत न होता, अगर गलत दवाइयों का निर्माण ही नहीं होता, रोगी के प्रति दवा बनाने वाले का ख्याल होता कि बीमार शरीरों को मदद देने के लिए दवाई बनानी है, तो गलत दवाइयों का निर्माण नहीं होता और रोग मिटाने की जगह पर दवाइयां प्राण न लेती, तो भूल कहाँ हुई? ऐसा सोचने से लगता है कि मनुष्य स्वयं जब धर्म से च्युत हो जाता है तो समाज में अनेक प्रकार के दुखों का सृजन होता है। ऐसे ही सब एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ट्रेन के भी, बस के भी, तो उसमें भी मुझे लगता है कि अगर दो ट्रेन आपस में लड़ गई, भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग मर गए, तो अब उसमें गाड़ियों का तो कोई दोष है नहीं, फिर हम होते हैं उसके चलाने वाले, तो अपने धर्म के प्रति हम सजग होते, कर्तव्य के प्रति सजग होते, किसी तरह की कोई असावधानी हम नहीं करते, तो आज इतनी अधिक संख्या में जगह जगह पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और हजारों हजार लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं भी आप देखिए खाद्य पदार्थों की खराबी से बीमारियां बढ़ जाएं और दवाइयों की खराबियों से बहुत से लोगों का देहांत हो जाए, तो इन सबके भीतर किसका दोष दिखाई देता है? ये मनुष्य का दोष दिखाई देता है। तो विवेक का अनादर कर देना, कर्तव्य की ओर से लापरवाह हो जाना, अपने धर्म से च्युत हो जाना, इसी के कारण समाज में इतनी प्रकार की तकलीफें दिन नित्यमयी उत्पन्न होती रहती हैं। तो आध्यात्मिक विकास के लिए और संसार के राग से मुक्त होने के लिए, संसार के ऋण से उऋण होने के लिए, संसार की दासता से मुक्त होने के लिए पहली बात है साधक के जीवन में कि वो धर्मात्मा बने। और धर्मात्मा बनने का पहला शर्त है कि हमें सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखना चाहिए। सरदार शहर में एक दिन इसकी चर्चा हो रही थी तो मैं ऐसे बता रही थी कि भाई दूसरों के प्रति जो हम लोग कुछ अपकार करते हैं तो बल के अभिमान में आकर अपकार करते हैं। जो निर्बल होता है वह तो किसी का अपकार कर ही नहीं सकता, साहस ही नहीं होगा उसका, डरेगा, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है, तो निर्बल आदमी तो ऐसा करता नहीं है। और सबल आदमी अगर विवेक के प्रकाश में चलता है तो वो प्राप्त बल का दुरुपयोग कभी करता ही नहीं है, जब करेगा तो किसी की सहायता ही करेगा, सहयोग ही देगा। तो बलवान है और विवेक विरोधी है, विवेक के प्रकाश का आदर नहीं करता, तो बल के अभिमान में आ करके वो तकलीफ पहुंचाता है दूसरों को। तो उसको ऐसा लगता है कि हम तो ऐसा नुकसान कर दे सकते हैं, हम तो इनको पाठ पढ़ा दे सकते हैं, हम तो इनको मजा चखा दे सकते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे बलवान के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, इनको हमारे बल का पता नहीं है, अभी हम इनको दिखाते हैं। ऐसा करके जो दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाने के लायक व्यवहार कर देता है तो वो बल का अभिमानी अपना जितना नुकसान करता है उतना दूसरे का नहीं कर सकता। अपना नुकसान क्या हुआ कि उसकी बल की तो हानि हो गई, क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ बल है, प्रकृति की शक्ति से वह शक्तिमान हुआ है, और प्रकृति के प्राणियों को कष्ट पहुंचाने में बल का उपयोग कर दिया जाए तो वो जिस खजाने से बल आ रहा था वहीं का दरवाजा बंद होता है। आसानी से ये बात सब लोग समझते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, लेकिन महाराज ने इसको बहुत विस्तार से बताया है उन लोगों को। तो एक क्षति ये हो गई। दूसरी क्षति, उससे भी बड़ी क्षति क्या हो गई, बल कम हो गया, ये तो भौतिक हानि हो गई, और उससे भी बड़ा नुकसान क्या हो गया कि जीवन मिला था संसार में, संसार की दासता से मुक्त होने के लिए, पराधीनता से मुक्त होने के लिए, शांति और जीवन मुक्ति को पाने के लिए, इसके लिए जीवन मिला था, तो ये उद्देश्य ही नष्ट हो गया। क्या हो गया कि सबके प्रति सद्भाव और सहयोग का जो आचरण है, धर्माचरण जिसको कहेंगे, उससे हट जाने का ये फल होता है कि संसार की दासता जीवन में से निकलती नहीं है। तो बड़ा भारी नुकसान उसका हो गया कि जीवन मुक्ति की साधना ही वो नहीं कर सकेगा, न ध्यान लगा सकेगा, न शांत रह सकेगा, न देह के अभिमान से छूट सकेगा, न संसार की पराधीनता से छूट सकेगा। ऐसी चर्चा मैं कर रही थी और इसके संबंध में अपना एक उदाहरण सुनाया था मैंने। स्वामी जी महाराज से मेरी बात हुई थी तो परीक्षक बन करके परीक्षार्थियों के की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे मैंने कुछ प्रश्न किया था कि महाराज समय भी कम मिलता है, काम भी ज्यादा रहता है, ठीक तरह से ना करो तो भीतर अच्छा भी नहीं लगता है, देर हो जाए तो नौट झंझट खड़ा होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो सब तो यूनिवर्सिटी का जो नियम कानून है तो जहाँ है वहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर इस काम के करने में, चाहे किसी भी काम के करने में लापरवाही की गई, असावधानी की गई, जल्दीबाजी की गई, ठीक तरह से नहीं किया गया तो कार्य करने में अगर भूल रह जाएगी तो करने का राग नहीं मिटेगा। बड़ी जोरदार बात है। सब लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, शुद्ध काम करो और निष्काम कर्म करो और ऐसे कर्म करो वैसे कर्म करो, बहुत सी बातें हैं कर्म के संबंध में। लेकिन जब मैंने ये सुना कि छोटा से छोटा काम क्यों न हो, अगर राग निवृत्ति की साधना के रूप में करने का है तो उसको पूरी तरह से सही ढंग से करना जरूरी है, और अगर गलत सलत ढंग से छोटा समझ करके लापरवाही के साथ किया गया, गलती सलती करके खत्म किया गया, ऊपर से ज्योते पूरा करके, तो उसका एक बड़ा भारी दुष्परिणाम यह होगा कि काम करते करते करने की शक्ति खत्म हो जाएगी और करने का राग नहीं मिटेगा। तो कुछ विचारक लोग आए थे, स्कूल और कॉलेज के अध्यापक लोग भी आए थे, कुछ कम्युनिस्ट विचार रखने वाले नई उम्र के टीचर लोग भी सब आए थे। तो उन्होंने बहुत पसंद किया, कहा ऐसी बात तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, मामूली काम दिखाई देता है ऊपर से और कौन देखता है, कौन जानता है, ज्यों त्यों करके किसी तरह से पूरा कर दिया, खत्म हो गया, छुट्टी पाए। तो उस छोटे से काम के लिए, थोड़ी देर के झंझट से छुट्टी पाने के लिए अगर गलत गलत तरीके से करके ढक ढुक के छुट्टी कर दिया तो बहुत दिनों के लिए संसार की आसक्ति में और राग में बंधे हुए रह गए। बहुत बड़ी बात है। झाड़ू लगाने का काम है, जल पिलाने का काम है, रसोई बनाने का काम है, घर संभालने का काम है, कुछ भी काम है मनुष्य के लिए हर काम सावधानी से करने का है और पवित्र भाव से करने का है। तो भाव की पवित्रता में महाराज जी ने सद्भाव को प्रधानता दी कि भाई किसी का किसी प्रकार से मेरे द्वारा नुकसान न हो, सबके हित की भावना दिल में रहे तो हमारा कार्य जो है वो दूसरों के लिए हितकारी भी सिद्ध होगा और दूसरों के लिए तो बहुत मामूली लाभ पहुंचाएगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि हम करने के राग से छूट जाएंगे, तब शरीर का मोह भी छूट जाएगा, तब संसार की आवश्यकता भी अपने लिए नहीं रहेगी। अब ऐसा सोच करके देखिए कि अनेकों बार समूह में रहते हुए बहुत सी बातों को हम लोग सब देखते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं और बर्दाश्त भी करते रहते हैं, क्या बात है। तो समूह में रहना अपने लिए बहुत जरूरी मालूम होता है, सबके सहयोग के साथ शरीर को निर्वाह कराने की बात बहुत जरूरी मालूम होती है। कई बार मैंने वृद्ध जनों को देखा है कि नई पीढ़ी की बहुत सी बातें उनको ना पसंद हैं, फिर भी इस चिंता के मारे कि लड़कों का पोतों का विरोध किया जाएगा तो ये लोग हमारी देखभाल करना छोड़ देंगे तो मेरा निर्वाह कैसे होगा, तो ऐसा सोच करके विवेक विरोधी बातों का भी समर्थन करते रहते हैं। ये क्या है, ये इस दशा का परिणाम है कि हमारी शक्ति तो चली गई और संसार की आवश्यकता मुझसे नहीं गई, शरीर असमर्थ हो गया और शरीर को संभाल कर रखने की जरूरत मेरी खत्म नहीं हुई। इसके लिए महाराज जी ने कहा कि धर्मात्मा होना सबके सबको अनिवार्य है और सबके प्रति सद्भाव और सबको सहयोग देने की बात जिस जीवन में है उसका राग भी समाप्त हो जाता है और शरीर की संसार की अपने लिए जरूरत नहीं रह जाती, तो इसी का नाम जीवन मुक्ति है। अब जैसे विनोबा बाबा के लिए हम लोगों ने सुना ना, और दूसरे संतों के लिए सुना भी है, अपने महाराज जी को देखा भी है। डॉक्टर लोग से पूछ रहे हैं कि भैया बताओ तो कब तक इसको रखोगे, डॉक्टर लोग बेचारे क्या कहेंगे। अब जगा जाते कहते कि महाराज जी हम लोग बहुत दिन तक रखेंगे, तो हंस के कहते कि अरे भाई तुम नहीं जानते हो, अब ये रखने के लायक नहीं है। तो रखने के लायक नहीं है तो आनंद पूर्वक उसका त्याग कर दो। ऐसे ही विनोबा बाबा के लिए सुना गया कि भाई दवा नहीं लिया, खुराक नहीं लिया, सब छोड़ दिया, डॉक्टरों ने मित्रों ने सबने आग्रह किया तो कह दिया भाई अब ये रखने के लायक नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, समाज की सेवा के लिए इसको रखा जा रहा था, तो समाज की सेवा के लायक नहीं रहा तो छोड़ दो, अब कहे कि ये पकड़े रहो। तो अपने को जरूरत नहीं है तब हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी बात पूरी हो जाती है किसके जीवन में, किसके जीवन में सबके प्रति सद्भाव और सहयोग देने की बात रहती है। मिलिट्री डॉक्टर एक बार मिले थे मुझको रांची में, जान पहचान के व्यक्ति थे, तो सुना रहे थे, कह रहे थे कि मैं क्या बताऊं मेरा हृदय कांप जाता है। युद्ध क्षेत्र से सिपाही आते हैं तो हाथ कट गए, पांव कट गए, कुछ नहीं रहा, बस खाली सिर से लेकर इतना सा मांस का लोथड़ा, और आए सबको रखना पड़ता है, सबकी सेवा करनी पड़ती है, तो कटकुट गया वो तो निकल ही गया लेकिन घाव ठीक हो जाए इसके लिए हम लोग उनको उनका ड्रेसिंग भी करते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवाई भी देते हैं, सब किया जाता है, और जल्दी से घाव भर जाए इसका इंतजाम किया जाता है कि दर्द पीड़ा से ये मुक्त हो जाए, तो उनको पथ्य दिया जाता है जिसमें मिर्चाई भी ज्यादा ना हो, मिठाई भी ज्यादा ना हो, ऐसा खाना दिया जाता है कि जिसको खाने से घाव भरने में जल्दी मदद मिले। तो कहें कि बड़ा दुख होता है मुझे कि बिस्तर में पड़े हैं, टट्टी पेशाब सब बात के लिए पराधीन है, हाथ पांव कट गए, किसी दिन चल नहीं सकेंगे, किसी दिन घूम फिर नहीं सकेंगे, कुछ भी कर नहीं सकेंगे, और फिर भी उनको जीने का इतना शौक कि हर प्रकार से परेशान रहते हैं कि कैसे जल्दी घाव भर जाए, कैसे ठीक हो जाए, फिर भी वो शरीर से सुख भोगने के इतने गुलाम हैं कि स्वीपर से मंगा करके बाहर से मांस पकाया हुआ खरीदवा के मंगा लेते हैं और खा लेते हैं, और बना बनाया घाव फिर बिगड़ने लगता है, फिर सड़ने लगता है, फिर दर्द होने लग जाता है। तो डॉक्टर बेचारा बहुत हृदयशील आदमी था, तो उसकी आंख में आंसू भर जाए और कहे कि हमारी समझ में नहीं आता है कि ये मांस के लोथड़े जीना क्यों चाहते हैं, जाता है ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, अब कुछ है नहीं, चलना फिरना नहीं होगा, कमाना नहीं होगा, किसी के काम आना नहीं होगा, और हर बात के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, तब भी चाहिए शरीर, चाहिए क्यों चाहिए कि हाथ पांव कट गया तो क्या हुआ, पराधीन हो गए तो क्या हुआ, कुछ देखने का सुख ले लेंगे, कुछ खाने का सुख ले लेंगे, तो कितनी घोर पराधीनता है समझो। ऐसी दुर्दशा में भी शरीर को रखना पसंद आता है, तो इसी से मालूम होता है कि शरीर की कितनी दासता उनके भीतर अभी तक शेष रह गई। इस दासता को मिटाने का उपाय महाराज जी ने बताया कि भाई बुराई किसी के साथ करो मत, और सबके प्रति सहयोग और सद्भाव रखो, तो एक विलक्षण शक्ति पैदा होगी। वो विलक्षण शक्ति क्या है कि बिना किसी ध्यान धारणा समाधि के और बिना किसी विशेष अभ्यास के आपके भीतर से ही एक बल अभिव्यक्त हो जाएगा कि जिसमें आपको अपने लिए शरीर और संसार की जरूरत नहीं रहेगी। तो कितना सामान्य व्यवहार के स्तर का व्रत दिलाया महाराज जी ने, और कैसे अलौकिक जीवन का दरवाजा जैसे खोल दिया। आप सोच करके देखिए ना कितना आराम लगेगा, अपने को शरीर और संसार की जरूरत न रह गई, कितना आराम लगेगा, स्वाधीन हो जाएगा आदमी एकदम, कोई जरूरत ही नहीं रह गई। तो इतने में लोक संग्रह, लोक सेवा और जीवन मुक्ति, ये दो बातें तो है, इतने में सिद्ध हो गई। और तीसरी बात जो रह गई, स्वामी जी महाराज ने जिसको विशेष रूप से एक स्वतंत्र साधन प्रणाली के रूप में हम लोगों के सामने रखा, यद्यपि विचार के आधार पर भी जब नाशवान से संबंध टूट जाता है, वृत्ति बाहर से सिमटकर अंदर अंतर्मुख हो जाती है, अपने उद्गम से जुट जाती है, तब भी जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति हो जाती है। परमात्मा को मान के चलो तो, न मान के चलो तो, साकार की उपासना करो तो, निराकार की उपासना करो तो, उसमें कोई भेद नहीं है, चाहे परमात्मा को मानो चाहे न मानो। केवल विवेक के प्रकाश में जो त्याज्य है उसका त्याग कर दिया, और बाहर से सब वृत्तियों को समेट कर भीतर एक एक उद्गम में केंद्रीभूत कर दिया, तो उस सत्य से जब जीवनी शक्ति जुट जाती है तो उसमें भी नित्यता अभिव्यक्त होता है। जिस जीवन में नाश नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, सर्व दुखों का अंत हो जाता है, आनंदमय अस्तित्व अनुभव में आता है, और उसमें प्रेम भाव की सरसता भी रहती है। तो ऐसा विचारक जन की साधना का भी परिणाम होता है। और अगर उस विचार के साथ साथ विश्वास भी चल रहा है, जैसा कि हम लोगों में से अधिकांश भाई बहनों का जीवन है, विचार के आधार पर असत के संग से छूटना ये तो अनिवार्य है ही है, उसके साथ आस्था श्रद्धा विश्वास का तत्व जो हमारे जीवन में है उससे भी काम लेने की बात स्वामी जी महाराज ने बताई। और ये कहा कि पहले प्रभु की सत्ता में विश्वास करो, साकार निराकार का भेद नहीं है, परमात्मा है तो है मानो, कैसा है तो महाराज जी की परिभाषा बहुत बढ़िया है, वो कहते हैं कि जैसा तुमने सुना है ऐसा भी है, जैसा तुम पसंद करते हो ऐसा भी है, जितना जितना दूसरे लोगों ने अनुभव किया है, कहा है और ग्रंथों में लिखा है उतना भी है, और सबसे विलक्षण भी है। ग्रंथों में जितना लिखा गया है और जितने अनुभवी जनों ने अपने अनुभव से जितना बताया है, तो जितना कहा गया, जितना सुना गया, जितना अनुभव किया गया, जितना ग्रंथों में लिखा गया, उतना भी है और उससे भी लक्षण भी है। बहुत अच्छी लगी बात मुझे, इसलिए कि मान लीजिए कि परमात्मा के संबंध में आपका अनुभव कुछ ऐसा निकल आया जैसा कि कहीं भी किसी ने नहीं कहा हो, कहीं भी ना लिखा हो, तो आप कहेंगे कि क्या जाने ये अनुभव ठीक है कि गलत है, ऐसा तो कहीं किसी ने कहा ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। तो सो महाराज जी कहते हैं कि भाई जब वे अनंत गुणवान कहलाते हैं कि उनके गुणों की कोई सीमा ही नहीं है, तो तुम सीमा बांधना क्यों पसंद करते हो, ये कहना क्यों पसंद करते हो कि वे निराकार हैं, ये कहना क्यों पसंद करते हो कि वे साकार हैं, ये क्यों पसंद करते हो कि वे निर्गुण निराकार हैं, कि सगुण साकार हैं, ये क्यों नहीं पसंद करते हो कि मुझे जितना मालूम है और स्वभाव से मुझको जितना पसंद है उतना भी है और उससे विलक्षण भी है। ये कहा उन्होंने, ऐसा मान करके अपने को जो पसंद आवे, साकार परमात्मा पसंद आवे तो साकार सही, और निराकार पसंद आवे तो निराकार सही, उसकी सत्ता को मान लिया जाए, उसमें विश्वास किया जाए, उसकी महिमा को स्वीकार किया जाए, तो आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनसे अपना सीधा संबंध स्वीकार करने मात्र से उनके स्वरूप की, उनकी विभूतियों की अभिव्यक्ति मनुष्य के जीवन में होने लगती है। वही वही अपने को सरस बनाती है, उसी से जीवन में रस का संचार होता है, उस रस का संचार होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिससे कभी अरुचि नहीं होगी, उस रस का संचार उसमें होता है और जीवन पूर्ण होता है। तो इसको महाराज सत्य की स्वीकृति कहते हैं, क्योंकि अपने को ये बात पसंद है कि मुझसे सबल मेरे प्रति सद्भाव रखे और सहयोग दे, इसलिए दूसरों के प्रति सद्भाव और सहयोग रखना ये धर्म है, धर्मात्मा होना हो गया। और जो धर्मात्मा हो जाता है उसमें जीवन मुक्ति की सामर्थ्य आ जाती है, तो ये आध्यात्मिक विकास हो गया। और जो सचमुच किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रख सकता, वो प्रभु का प्यारा बनता है, प्रभु को प्रेम करने वाला होता है, तो ये आस्तिकता का विकास हो गया। तो एक ही मानव जीवन में जो करने की शक्ति है वो धर्म के साथ जुट गई तो हम धर्मात्मा हो गए, और जो विवेक की शक्ति है उसने मुझको असत से छुड़ा दिया तो हम जीवन मुक्त हो गए, और जो प्रेम करने का भाव है उससे हम प्रेम स्वरूप परमात्मा के साथ जुट गए तो जीवन सरल हो गया, आस्तिकता के पक्ष में उन्नति हो गई। तो इस तरह से सेवा, त्याग और प्रेम एक ही व्यक्तित्व के तीनों अलौकिक तत्व हैं कि जिनका कभी नाश नहीं होगा। सेवा के संबंध में महाराज जी ने ऐसा बताया है कि क्रिया तो सेवा का बाहरी रूप है, वास्तविक रूप क्या है कि जिसमें करुणा हो और जिसमें प्रसन्नता हो, तो सुखी को देखकर प्रसन्न होना, दुखी को देखकर करुणित होना, ये सेवा का स्रोत है। उस दिन जब विमला बहन ठक्कर यहाँ आई थी और स्वामी जी महाराज के संस्मरण सुना रही थी तो कह रही थी कि सर्वोदय का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, स्वामी जी महाराज को सर्वोदय के नेताओं ने प्रेसिडेंट करके बुलाया था, प्रिसाइड करने गए थे महाराज। तो वहाँ जब बातचीत होने लगी, सेवा सेवा सेवा, सर्वोदय में तो सेवा ही खास बात है, तो होने लगी तो लोगों ने स्वामी जी के सामने बातचीत की तो महाराज जी ने पूछा कि भाई सेवा का स्रोत कहाँ है, जो कुछ आप लोग कर रहे हैं सर्वोदय के माध्यम से सेवा का, उसमें स्रोत कहाँ है। तो सब लोग सोचने लगे, किसी ने गांधी जी को बताया, किसी ने जयप्रकाश जी को बताया, इसी में से ये आया है। तो महाराज जी ने उनको बताया कि नहीं भाई, सेवा का स्रोत तो करुणा में है। तो जिस हृदय में पर पीड़ा से करुणा उमड़ती है उसी के द्वारा सेवा बनती है। तो ये करुणा जो है वो प्रभु प्रेम के समान ही अलौकिक तत्व है जिसका कि नाश नहीं होता। तो मनुष्य के व्यक्तित्व में जहाँ स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के रूप में नाशवान संसार का भी एक पक्ष जुटा हुआ है, उसी जगह हमारे आपके व्यक्तित्व में विवेक के प्रकाश और प्रेम के भाव में अविनाशी तत्व भी मिला हुआ है। आज ही अपने को देखा जाए, जिस दशा में हम लोग सब बैठे हैं सत्य की चर्चा करने, इसी दशा में आप सोच करके मुझको बताइए कि जीवन तत्व अपने में विद्यमान है कि नहीं है, है ना?
जरूर।
तो वो तो शरीर का हिस्सा नहीं है, और शरीर के नहीं रहने पर भी वो रहेगा। तो इस तरह से अविनाशी परमात्मा अभी इसी क्षण में हम लोगों के साथ विद्यमान है, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, उसी तरह से दूसरी बात देखिए, ये सत्यम हो गया। अब दूसरी बात देखिए, विवेक का प्रकाश, इसी समय जबकि विवेक विरोधी संबंधों को लेकर हम लोग संयोग के सुख और वियोग के घोर दुख में पड़े हुए हैं, जिस समय हम सभी भाई बहन संयोग के सुख और वियोग के दुख में पड़े हुए हैं, उस समय भी विवेक का प्रकाश अपने साथ है कि नहीं है?
है।
संयोग का सुख क्षणिक है, नाशवान है, आज दिखाई दे रहा है कल मिट सकता है, इस बात को हम विवेक के प्रकाश में देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। वियोग का घोर अथाह दुख अपने पर आ गया, उसमें भी नाशवान के नाश हो जाने के बाद वियोग के ताप में तपते रहना निरर्थक है, गया हुआ लौट करके आ नहीं सकता, बिगड़ा हुआ संयोग फिर बन नहीं सकता, इस बात की जानकारी अपने को है कि नहीं है। तो इसी समय, जिस समय हम विवेक के अनादर से संयोग जनित सुख और वियोग जनित दुख में पड़े हुए हैं, फिर भी विवेक का प्रकाश जो अलौकिक तत्व है उसका नाश मेरे भीतर से नहीं हुआ है, ठीक है, स्वयं अपने को गलत काम के साथ जुटा हुआ देखकर हम लोग अपने को क्षमा कर देते हैं, क्या करें भाई परिस्थिति ऐसी बन गई, क्या करें हमारे से संभाल में नहीं आया, हमने ऐसे कह दिया, हमने ऐसे कर दिया, तो अपने को हम लोग क्षमा कर लेते हैं। मालूम तो होता ही है कि ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था, मालूम होता है, विवेक के प्रकाश में दिखाई देता है, फिर भी क्षमा कर देते हैं। और कभी कभी नहीं भी दिखता है, ऐसा भी होता है कि व्यक्तित्व का मोह इतना जोरदार होता है, मेरे मुंह से जो बात निकल गई उसको तो सत्य प्रमाणित होना ही चाहिए, इस आग्रह के मारे कभी कभी अपनी भूल अपने को नहीं भी दिखती है। लेकिन उसी किस्म का भूल अगर दूसरा कोई करे तो दिखता है कि नहीं जी, दिखता है। तो इसका मतलब है ये कि ज्ञान के प्रकाश स्वरूप परमात्मा अभी भी इस क्षण में भी हम लोगों के साथ विद्यमान है। ज्ञान जिनका स्वरूप है, ज्ञान का अनंत प्रकाश जिनका स्वरूप है, वो परमात्मा ज्ञान के रूप में, विवेक के प्रकाश के रूप में इस क्षण में भी हमारे भीतर विद्यमान है। तो उसी में तो दिख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही प्रेम का रस भी है भाई, जीवन अपने आप में सरस लगता है, और जब हम रस की हानि करने वाले, रस को मिटाने वाले व्यवहार में, संबंध में, विश्वास में फंस जाते हैं तो रस घट जाता है। लेकिन प्रेम भाव से शून्य किसी मनुष्य का जीवन हो ऐसा आपने कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं होता है। महाराज जी कहते कि भाई देखो, चोर डकैत जो होते हैं उनका भी अपना सब नियम कायदा होता है, तो दूसरों के लिए जो बड़े खूंखार होते हैं वे भी अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी मंडली के लिए बहुत कोमल होते हैं। एक कैदी के संबंध में महाराज जी बता रहे थे कि फांसी की सजा हो गई थी और जेलर के ऑर्डर से उस कैदी को ले जाना था फांसी देने की जगह पर, तो सिपाही आया तो उसका दोनों हाथ पकड़ करके खूब कस के बांध दिया ले चलेंगे। तो जब कस के उसको बांधा तो दर्द होने लगा हाथ में, और वो जान रहा है कि अब मुझको ले जाया जा रहा है, अब गला कटेगा। फिर भी जब कस के बांधा गया उसके हाथ को, सिपाहियों ने लापरवाही की कि अब क्या, अब तो इनको काटना ही है, कौन बड़ी बात है। तो कस के बांधने से जब हाथ में कलाई में दर्द होने लगा तो आंखों में आंसू भर के कहता है सिपाही से कि भैया मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इतना कस के क्यों बांधते हो। तो क्या मतलब है, उसको मालूम तो था ना कि मैंने दूसरों की हत्या की है और उसको देने के लिए ले जा रहे हैं, तो गला कट ही जाना है, तो इतनी देर में कस के बांधा तो या ढीला बांधा तो इससे क्या मतलब। फिर भी अपने प्रति उसके भीतर कितनी कोमल भावना है, प्रार्थना करके सिपाही से कहने लगा कि भैया मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इतना कस के क्यों बांधते हो। तो इस प्रकार की जो एक कोमल भावना है, इस प्रकार का जो एक एक दूसरों के साथ प्रेम का, प्रेम के आदान प्रदान की आशा है, वो किसी भी काल में किसी के भीतर से नष्ट नहीं होती है। परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है और उसी का दिया हुआ प्रेम हम लोगों ने माता पिता से पाया, गुरुजनों से पाया, पशु पक्षियों से पाया, वनस्पति से पाया, प्रकृति से पाया, सब तरफ से सहयोग, सद्भाव और प्रेम का व्यवहार जो एक समूह में रहने पर अपने को मिलता है, तो उसका सोर्स कहाँ है? ध्यान दिया कभी? उसका उद्गम कहाँ है? कभी ध्यान में आया? सोचो तो पता चलेगा। ये सब मिठास जो हम एक दूसरे के साथ है, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ करके, यात्री हो करके, प्लेटफॉर्म पर बैठ करके, जहाँ भी अपरिचित लोगों के साथ भी काम पड़ता है, रहना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, मिलना जुलना पड़ता है, तो जहाँ भी कहीं आपने सहयोग और सद्भाव देखा होगा, मधुर व्यवहार देखा होगा, सहानुभूति पाई होगी, तो उस सबका आधार कहाँ है? वही प्रभु है। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर सदैव विद्यमान है और उनकी विद्यमानता का प्रमाण है ये तीनों। हम अपने अपने जीवन के अस्तित्व को अनुभव कर रहे हैं कि मैं जीवित हूँ, मैं हूँ, तो ये भी उनके अस्तित्व का ही प्रभाव है। और विवेक के प्रकाश को भी हम अनुभव कर रहे हैं कि बहुत सामान्य भाव से भले बुरे का ज्ञान अपने को सब समय होता रहता है, तो ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही प्रकाश है। और दूसरों के लिए स्वयं मधुर बनना और दूसरों से मधुर व्यवहार की आशा करना और दूसरों के किए हुए मधुर व्यवहार को मधुरता के रूप में अपने भीतर अनुभव करना बड़ा मीठा लगता है। कोई मेरे प्रति स्नेह सहानुभूति रखने वाला हो और कुछ बोले अथवा न बोले, कुछ करे अथवा न करे, लेकिन उसके भीतर मेरे लिए स्नेह है, सहानुभूति है, तो इतनी ही बात आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? तो ये सब बातें उस परमात्मा में से ही हैं और इन तत्वों का कभी नाश नहीं होता। तो आज अनेक प्रकार के विकारों से घिरे हुए हम सब लोग इस धरती पर बैठे हैं, तब भी अपने को कभी भी परमात्मा की उपस्थिति से वंचित नहीं मानना चाहिए। ठीक है? तो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाए, विवेक का प्रकाश बढ़ जाए और प्रेम का रस इतना बढ़ जाए कि जन्म जन्मांतर का सब विकार उसमें धुल जाए, हम शुद्ध होकर, पवित्र होकर, प्रेम स्वरूप होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाएं, यही हमारे जीवन का प्रोग्राम है और इसी दिशा में हम सब भाई बहनों को सचेत करना है।